शांति भाई साहब, आपका स्वागत है।
ओम शांति
भाई साहब। हमारा पहला प्रश्न है कि कहा जाता है कि परमात्मा जन्म मरण से सदा मुक्त है, तो वो किस विधि से अवतरित होकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं?
बहन जी, परमात्मा को सृष्टि पर आना भी है, क्योंकि जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम सुनेंगे कैसे, जब तक मुख से नहीं बोलेंगे। और सत्य ज्ञान परमात्मा के पास है, क्योंकि मनुष्यों के पास तो अपने अगले पिछले जन्म का भी पूरा ज्ञान नहीं है, तो सारे सृष्टि के आदमध्य अंत का ज्ञान, सत्य ज्ञान परमात्मा के पास है। अब प्रश्न ये है कि परमात्मा सबके पिता, शारीरिक जन्म तो लेंगे नहीं, क्योंकि जन्म लेंगे तो शरीर छोड़ना भी पड़ेगा, वो सदा मुक्त है, लेकिन परमात्मा को आना भी है, इसीलिए अवतार शब्द प्रयोग किया गया है कि परमात्मा जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं, अर्थात अवतरित होते, आते जरूर हैं लेकिन अवतार लेते हैं। गीता में ही लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा साधारण मनुष्यों की तरह माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूं और मैं प्रवेश होने योग्य हूं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि परमात्मा किसी अन्य शरीरधारी मनुष्य आत्मा के शरीर के अंदर प्रवेश करके अवतरित होते हैं, उसके मुख अरविंद का आधार लेकर के गीता का भगवान वाच करते हैं।
भाई साहब, इस बात का क्या प्रमाण है या कोई ऐसा प्रमाण है जो कहें कि गीता का जो निराकार भगवान है वो शिव ही है?
देखिए, आपने खुद ही कहा कि केवल शिव की ही वंदना, बहुत सारी प्रतिमाएं, चिन्ह, मूर्तियां, मंदिर हैं, शिवालय भी हैं, केवल शिव की ही प्रतिमा को परमात्मा नमः कर कहकर या शिव परमात्मा नमः कहकर वंदना की जाती है, बाकी सब की वंदना देवी देवता कहकर की जाती है। और शिव की प्रतिमा का स्वरूप भी ऐसा है, लिंगाकार है, ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है, जो शरीरधारी नहीं है, इसका कोई शरीर आकृति नहीं है, इसलिए शिव हो गए परमात्मा, क्योंकि परमात्मा कहकर वंदना की जाती है। और गीता भगवानो वाच है, कि गीता का ज्ञान भगवान यानी परमात्मा ने दिया, तो अगर शिव परमात्मा है और गीता का ज्ञान परमात्मा ने दिया तो स्पष्ट है कि शिव ही निराकार भगवान है गीता के, क्योंकि शिव निराकार है। अब दूसरी बात यह कि शिव अवतरित होते हैं, अब अवतरित होकर के ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको गीता का भगवान कहा जाता है। एक हो गया परमात्मा निराकार स्वरूप, एक जब वो शरीर में अवतरित होते हैं तो शरीर किसी का भी हो लेकिन शारीरिक रूप है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि गीता के निराकार परमात्मा तो शिव हैं, लेकिन वो किस विधि से और किस रूप में अवतरित होते हैं? वैसे तो लिखा हुआ गीता में कि मैं प्रवेश होने योग्य हूं, और जो गीता मिलती है उसमें ये बताया गया कि एक रथ है, उस रथ के अंदर सारथी भी है और रथी भी है, अर्थात उसमें जो जिस शरीर में भगवान अवतरित होते हैं वो शरीर का को कहेंगे रथी, चलाने वाली आत्मा, और उसके साथ में बैठा हुआ सारथी, जैसे प्लेन में कोई पायलट होता है, तो उस रथ में एक रथी है और एक सारथी है, भगवान को सारथी कहा गया है। इसके बारे में आपने कहा, क्या कोई ऐसा चिन्ह या सबूत है? एक कथा है और वो शिवरात्रि से ही संबंधित है। उस कथा में ये बताया गया है कि गंगा जो है, गंगा शिव की जटाओं से निकली थी और उसको भागीरथ शंख बजाते हुए भारत में लाए थे, इसके चित्र भी मिलते हैं। अब इसमें गंगा किसको कहा जाता है? गीता ज्ञान की गंगा, क्योंकि परमात्मा तो ज्ञान ही सुनाते हैं। अब वो शिव से निकली, लेकिन क्योंकि उन्होंने शिव और शंकर को एक कर दिया है तो उन्होंने शंकर की जटाओं से गंगा को निकले हुए दिखाया गया है। और उसको फिर भागीरथ भारत में कैसे लाया, शंख बजाता हुआ। अब भागीरथ का अर्थ वो लोग राजा भागीरथ करके कहते हैं, लेकिन अगर भागीरथ का शाब्दिक अर्थ लें तो वो बनता है भाग्यशाली रथ या भाग्यशाली श्री रूपी रथ। तो परमात्मा शिव ने, निराकार ने भाग्यशाली श्री रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरण लिया। इससे बड़ा और प्रमाण और स्पष्ट बात क्या हो सकती है। और उन्होंने शंख बजाया अर्थात भगवानों वाच किया, उसको उन्होंने शंख ध्वनि बता दिया है। तो परमात्मा शिव ने भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके मुख से गीता ज्ञान सुनाया, जिसको उन्होंने कहा ज्ञान की गंगा बहाई। अच्छा, अब कौन सा भाग्यशाली शरीर रूपी रथ था? तो इसके लिए सर्वमान्य है कि परमात्मा स्थापना का कार्य, सृष्टि की, नई सृष्टि की स्थापना कार्य ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, और ब्रह्मा को ही आदि देव कहा जाता है, अर्थात देवताओं की सृष्टि की आद में होने वाले देवता, यानी जिनके द्वारा देवताओं की सृष्टि का शुरू होता है। वो देवताओं की सृष्टि में नहीं है, लेकिन देवताओं की सृष्टि की आद में होते हैं। तो ये सारी कथा इस बात का पक्का प्रमाण है कि निराकार परमात्मा शिव है, और वो शरीर रूपी रथ में, ना कि चार पहिये के रथ में प्रवेश करते हैं, और उसको भाग्यशाली कहा जाता है, जिसमें भगवान और वो ब्रह्मा का रथ है।
भाई साहब, एक और प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है तो जितने भी आचार्य हैं, विद्वान हैं, भक्तजन हैं, वो उन्हें पहचानते क्यों नहीं?
बहन जी, ऐसा है कि गीता के भगवान ने ये तो पहले ही कहा था कि जब अति धर्म ग्लानी होगी तो मैं पुनः आऊंगा, और जब पहले भी परमात्मा आए थे तो भी आप वो अगर दृश्य सामने लाए तो परमात्मा को इन्होंने नहीं पहचाना था, क्योंकि दो सेनाएं थी। तीन तो वो इस तरह की सेनाएं नहीं थी युद्ध करने वाली, लेकिन दो श्रेणियों में समाज बटा हुआ था। एक श्रेणी में परमात्मा से सृष्टि के विनाश होने के काल जब भगवान आते हैं प्राणी सृष्टि, उससे पहले उस समय परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्मा थे, जिनको हम पांडव कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा से गीता ज्ञान सुना, परमात्मा को माना और पहचाना। और दूसरे थे पर विनाश काले परमात्मा से विपरीत बुद्धि, जो कौरवों की सेना में शामिल थे। अब जिनके आपने नाम लिए उनमें कौन कौन थे? उनमें द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, और अक्षुणी सेना थी, सभी और उस तरफ थे। अब उन्होंने नहीं पहचाना, क्यों नहीं पहचाना? एक बात तो यह है कि वो शास्त्रों का आधार लेते रहे, क्योंकि वो कहते थे कि शास्त्रों में तो लिखा है कि परमात्मा कलयुग के अंत में नहीं आता और परमात्मा द्वापर के अंत में आता है। अभी तो कलयुग का समय है, तो परमात्मा आते हैं कलयुग के अंत में। दूसरे, उन्होंने ये सुना पड़ा हुआ था कि परमात्मा श्री कृष्ण जी के रूप में आते हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो वो श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो श्री कृष्ण का तो बहुत ही आकर्षक शरीर है, देवता स्वरूप है, तो अगर श्री कृष्ण के रूप में आ जाएं, आज भी आ जाएं, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे वो भगत हो, नास्तिक भी भगवान को पहचान लेगा कि देखो श्री कृष्ण आ गए। पर गीता का भगवान कहता है, एक तो मेरा अपना जन्म नहीं लेता शरीर, ना मैं श्री कृष्ण देवता के रूप में आ सकता हूँ, क्योंकि जिस समय में आता हूँ वो अति धर्म ग्लानी का समय है, उस समय तो देवताओं का जन्म ही नहीं हो सकता। दूसरे, मैं अपना जन्म नहीं लेता, अवतार लेता हूँ, प्रवेश करके अवतरित होता हूँ, तो वैसे ही गुप्त है, तो जो व्यक्ति उनको सामान्य आंखों से देखते हैं वो तो उनको साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं, और जो वो भागीरथ है ब्रह्मा का, इसलिए इस कंफ्यूजन के कारण वो नहीं उसको पहचान पाते। और खास बात यह है कि शास्त्रों का आधार लेते हैं तो शास्त्रों में तो सारी सृष्टि चक्र की आई हुई लाखों वर्ष कर दी गई है, तो अभी तो परमात्मा को आए हुए जैसे आज की स्थिति है वो मानते हैं कि 5000 वर्ष ही हुए हैं द्वापर के अंत को जिसको मानते हैं, तो अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं। दूसरी तरफ जो जानते हैं इस बात को समझते हैं वो देख रहे हैं कि अति धर्म ग्लानी का समय है, भगवान के आने का समय हो चुका है, तो ना तो समय को समझते हैं, जब जिस रथ में आते हैं उसको भी नहीं पहचानते, फिर वो शास्त्रों का आधार लेते हैं जहाँ कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की गई है, तो अनेक कारणों से वो परमात्मा को नहीं पहचानते। लेकिन ये तो गीता में ही लिखा हुआ है कि परमात्मा मूढ़ मति मनुष्य मुझे तुच्छ समझते हैं, साधारण तन में आया हुआ और मुझे नहीं पहचानते, इसलिए वो नहीं पहचानते।
यानी एक मूल कारण यह है कि जब परमात्मा का अवतरण होता है तो वो किसी बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षण मूर्त नहीं, लेकिन एक साधारण इंसान के जब तन में होता है तो इतने चाहे कोई बड़े से बड़ा आचार्य हो उसे समझ नहीं पाता।
क्योंकि आकर्षण तन की बात नहीं है, देवता उन्होंने एक स्पेसिफिक आत्मा को गीता का भगवान माना हुआ है, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण 16 कोला संपूर्ण देवता है, तो नेचुरली आकर्षक देवता है। जब धर्म ग्लानी का समय होता है उस समय तो ये विद्वान आचार्य पंडित और साधारण प्रजा होती है, उसमें देवता कहाँ से आए और उसके माता पिता कौन हो, और परमात्मा तो जन्म लेता ही नहीं, तो उनको देवताओं का शरीर मिलता ही नहीं जिसमें वो प्रवेश करके अवतरित हो। उस समय जो शरीर मिलता है वो साधारण होता है। इससे गहरी बात यह है कि वास्तव में श्री कृष्ण देवता जो सतयुग में थे उन्हीं की आत्मा भी पुनर्जन्म लेते लेते जब कलयुग के अंत जब उनके आने उसका जन्म साधारण होता है। पर आज किसी को कहो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती है वो इसको भी नहीं मानता, वो ये जानता ही नहीं कि श्री कृष्ण एक अलग शरीरधारी देवता थे जिनके अंदर परमात्मा अवतरित होकर उनके सारथी बने, उनके शरीर में दो आत्माएं थी, इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है।
भाई साहब, जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो क्या शिवरात्रि और नवरात्रि या ब्रह्मा की रात्रि इन सबका कोई संबंध है?
ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है, क्योंकि शिवरात्रि का जब बात आती है तो लोग प्रायः ये पूछते हैं कि शिव का रात्रि से क्या संबंध है। शिव परमात्मा अवतरित होते हैं लेकिन उनका रात्रि से क्या संबंध है? तो ये वास्तव में शिव परमात्मा के अवतरण के समय का द्योतक है कि परमात्मा अवतरित हुए किस समय हुए। तो जैसे गीता में भगवान ने कहा हुआ है कि मैं अति धर्म ग्लानी के समय जब पाप का घड़ा भर जाता है तब अवतरित होता हूँ, उसको हम अज्ञान अंधकार का समय भी कह सकते हैं, घोर अंधकार का समय कह सकते हैं। वैसे भी हम प्रेयर करते हैं हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। गीता के लिए ये भी माना जाता है ये ज्ञान सूर्य ने दिया था, सूर्य भी रोशनी का प्रतीक है, तो परमात्मा को ज्ञान सूर्य से भी उपमा की जाती है। तो अंधकार यहाँ पर कोई डार्कनेस फिजिकल डार्कनेस का प्रतीक नहीं है, ये रात्रि जो है ये अज्ञान अंधकार की रात्रि का प्रतीक है, इसलिए शिवरात्रि कही जाती है। अब है ब्रह्मा की रात्रि, ये भी प्रसिद्ध है कि सारे सृष्टि का जो कल्प है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। एक को शुक्ल पक्ष कहा जाता है, एक को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन और रात्रि क्यों कहा जाता है कि ब्रह्मा जो है उनकी जो आत्मा है वो सतयुग में जैसे श्री कृष्ण की थी तो सारे सृष्टि चक्र में ब्रह्मा की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है शुरू से लेकर अंत तक। बाकी कई ऐसी आत्माएं भी हैं जो सारे चक्र में जन्म नहीं लेती, उदाहरण के तौर पर जैसे जीसस क्राइस्ट की आत्मा है, तो जीसस क्राइस्ट का धर्म तो शुरू हुई अभी 2000 वर्ष पहले हुआ है, तो उनकी आत्मा जैसे अन्य आत्माएं सृष्टि के चक्र के अंदर प्रवेश करती हैं, धीरे धीरे आबादी बढ़ती है तो जरूर एडिशनल आत्माएं प्रवेश करती हैं, तो क्राइस्ट की आत्मा समझिए लगभग 2000 वर्ष पूर्व अवतरित हुई, उससे पहले तो नहीं थी। इसलिए वो आत्मा जो सारा चक्कर रहती है वो है ब्रह्मा जी की आत्मा, क्योंकि आदि देव है। अब इसलिए जब सृष्टि चक्र जो है उसके आधे हिस्से को हम कहते हैं स्वर्ग, आधे हिस्से को कहते हैं नरक, आधे हिस्से को कहते हैं नई दुनिया, दूसरे आधे को कहते हैं प्राणी दुनिया, पहले आधे को कहते हैं देवलोक, अमर लोक, देवताओं की दुनिया, मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न देवताओं की दुनिया, और दूसरे आधे हिस्से हम फिर हम कहते हैं कि जो देवता पुण्य क्षीण हो गए तो पाप शुरू हो गया, विकार शुरू हो गए, और अंत में आकर जैसे धर्म ग्लानी के समय भगवान आते हैं उस समय अति पाप शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अधर्म की दुनिया। तो जो अधर्म की दुनिया है उसको ब्रह्मा की रात कहा गया, और इससे भी साबित होता है कि ब्रह्मा का सृष्टि के परिवर्तन में बहुत मुख्य पाठ है, और ब्रह्मा जी के द्वारा ही परमात्मा उसका आधार लेकर गीता सुनाते हैं। तो ब्रह्मा की रात्रि और शिव की रात्रि वास्तव में एक ही है, क्योंकि उसमें शिव है निराकार माध्यम और ब्रह्मा है साकार। शिव है निराकार करावनहार और ब्रह्मा है साकार करणहार। शिव ब्रह्मा के द्वारा ही गीता का भगवानुवाच करते हैं, इसलिए शिवरात्रि का ब्रह्मा की रात्रि से सीधा संबंध है। अब आपने तीसरी बात पूछी नवरात्रि। अब ये नवरात्रि जो है ये शिव शक्तियों की स्मृति में मनाई जाती है, देवियों की स्मृति में मनाई जाती है, बल्कि नवरात्रि वर्ष में दो बार मनाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दिया वो किसने धारण किया और वो कैसे सारे समाज में फैला। तो इसलिए परमात्मा एक व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए तो अवतरित नहीं होते ना, तो सारे विश्व का परिवर्तन करते हैं। तो ये जो कथा हमने सुनाई थी कि शिव से गंगा निकली और उसको ब्रह्मा जी लाए शंख बजाते हुए, और वो गंगा फिर कौन है, तो उसको कहा जाता है ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा एक नाम है प्रतीकात्मक, लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, ये जो शिव की शक्तियां हैं जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान को बांटा। जैसे कहा गया है कि गोप गोपियां थे जो मटका भर के लाती थी गोपियां, तो कौन सा मटका था, तो मिट्टी का मटका तो था नहीं, बुद्धि को भी मटके से तुलना की गई है, तो उसमें ज्ञान धारण करके उन्होंने बांटा। तो वो नवरात्रि भी उसकी भी रात्रि मनाते हैं, और आप जानते हैं देवियों का लोग जागरण करते हैं जिसको जगराता कहते हैं, वो भी रात्रि के समय करते हैं और माँ माँ कह के पुकारते हैं। सरस्वती को भी ज्ञान की देवी कहा गया है। तो ये सारी देवियां क्योंकि साकार थी तो लोगों भक्तों को वो दिखाई देती थी, और ब्रह्मा भी भक्तों को दिखाई देते थे, लेकिन उनके अंदर जो निराकार शिव थे वो दिखाई नहीं देते थे। इसलिए नवरात्रि बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मा की रात्रि भी प्रसिद्ध है, और शिवरात्रि प्रसिद्ध तो है लेकिन उसके इस भाव अर्थ को लोग नहीं जानते।
भाई साहब, प्रचलित मान्यता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में सुनाया था, लेकिन आपने बताया कि ये ज्ञान निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं। आप स्पष्ट करेंगे कि ये कैसे सुनाया गया?
गीता के लेखक ने, क्योंकि दो बातें हैं, एक तो गीता के भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, दूसरे ये गीता की पुस्तक लिखी गई जिसके लेखक वेद व्यास जी हैं, तो उन्होंने पुस्तक के रूप में चित्रण करने के लिए ये बताया कि ये ज्ञान श्री कृष्ण जी ने रथ में बैठकर, जो चार पहिए वाला रथ है, और युद्ध के मैदान में सुनाया। तो हमने आपको स्पष्ट किया कि रथ का अर्थ यहाँ शरीर रूपी रथ है, ब्रह्मा का शरीर रूपी भाग्यशाली रथ यानी भागीरथ है, ना कि वो रथ। इसी प्रकार से ये जो युद्ध का मैदान बताया गया है ये वास्तव में कोई सेनाओं का हिंसक युद्ध की बात नहीं है, किंतु ये मनुष्य आत्मा के मन के अंदर ही जो आसुरी वृत्तियों और दैवी वृत्तियों का संघर्ष चलता है उसको सॉल्व करने के लिए गीता के भगवान ने ये ज्ञान सुनाया। इसके लिए परमात्मा ने कोई युद्ध का मैदान नहीं लिया, क्योंकि आप सोचिए इतना लंबा ज्ञान जो 18 अध्याय में लिखा गया है, युद्ध के मैदान में कोई सुना रहा हो, पहली बात तो इसमें आत्मा परमात्मा मुक्ति जीवन मुक्ति काम क्रोध आदि की बातें हैं जिसका कोई युद्ध से रेलेवेंस नहीं है। दूसरी बात कि क्या सारे फौजी सारे सैनिक खड़े रहे, घोड़े भी खड़े रहे और भगवान ज्ञान सुनाते रहे और अर्जुन सुनता रहा, ये भी संभव नहीं है। इसलिए ये एक एलिगोरिक जिसको कहते हैं एक सिंबॉलिक चीज है। तो परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाने के लिए प्रसिद्ध है, शिव को रुद्र भी कहते हैं, तो शिव परमात्मा ने इसके लिए एक रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, अर्थात एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जिसके द्वारा लोग यज्ञ को भी एक स्थूल यज्ञ ले लेते हैं जिसे अग्नि उत्पन्न होती है आदि मंत्र पढ़े जाते हैं। तो परमात्मा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा, अर्थात गीता ज्ञान सुनाने के लिए एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया, जहां पर परमात्मा ने बैठ करके ब्रह्मा जी के द्वारा उनके मुख अरविंद से ज्ञान सुनाकर ब्राह्मण पैदा किए। कहा जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का अर्थ होता है जो इस गीता ज्ञान को धारण करते हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने, जैसे कहा जाता है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी पैदा किए और ये कार्य अब पूरा उसी प्रकार से चल रहा है।
भाई साहब, तो वास्तव में गीता का संदेश क्या है और हमें जीवन में उसको पालन करने के लिए, धारण करने के लिए उसका मुख्य सार क्या है?
जो गीता के भगवान शिव ने गीता सुनाई उसका कुछ ना कुछ मेंशन गीता शास्त्र में है। तो जीवन में धारणा के लिए जो मुख्य बात गीता के भगवान ने सुनाई, जहां से गीता शुरू होती है, वह थी कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर मानने से ही विकार पैदा होते हैं जैसे हमने बताया। तुम आत्मा हो इसलिए अशरीरी बन के जीवन में व्यवहार करो। आत्मा शरीर को धारण किए हुए है पर सारे कर्म आत्मा करती है। स्वयं को भी आत्मा मानो और दूसरों को भी आत्मा देखकर व्यवहार करो, और ये है जीवन को चलाने की विधि, सत्यतापूर्ण श्रेष्ठ जीवन को चलाने की विधि। और गीता के मध्य में भगवान ने बताया है कि क्या अवॉइड करना है। उन्होंने कहा है कि सब दुखों का कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं जो हमें दैवी संपदा से बदलकर आसुरी संपदा बना देते हैं। देवताओं में ये विकार नहीं थे इसलिए उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, सर्वगुण संपन्न, गुणों को धारण किए हुए और निर्विकारी। तो इन विकारों को छोड़ना है और इसके लिए मुख्य बात यही है कि हम अपने आप को आत्मा माने। किंतु आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, तो आत्मा को विकारों को जीतने का मनोबल भी चाहिए। इसके लिए गीता के भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मन मना भव मुझे याद करो, या सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी मेरी शरण में आ जाओ। और इसमें मनमना भव परमात्मा को याद करने के लिए और माम एकम शरणम व्रज, इन दोनों बातों के लिए परमात्मा के परिचय की आवश्यकता है। और इसलिए परमात्मा ने कहा मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं कि मुझ निराकार परमात्मा परलौकिक परमपिता से अपना बुद्धि योग लगाओ। जो व्यक्ति इस बात को नहीं जानते, श्री कृष्ण जी को गीता का भगवान मानते हैं और उनका तो शरीरधारी रूप है जो अब नहीं रहा, तो उनसे योग लगाने का या बुद्धि लगाकर शक्ति लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए गीता के भगवान ने कहा कि निरंतर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे सब पिछले पापों से तुमको मुक्त करूंगा। और अंत में इसकी जो सिद्धि प्राप्त होती है वो गीता के लास्ट चैप्टर के एंड में है कि तुम नष्टो महा बन जाओगे। उसको कहा गया नष्टो महा और स्मृति लब्धा, अर्थात मेरी स्मृति और अपने आत्म स्वरूप की स्मृति में जब तुम पूरी तरह स्थित हो जाओगे तो तुम्हारा इस दुनिया की सब कलयुगी दुनिया की जो उस वक्त होती है धर्म की सब बातों से तमो प्रधानता से मोह नष्ट हो जाएगा और तुम सदगति को प्राप्त करोगे। तो हमें जीवन में यही करना है कि हम अपने आप को अशरीरी आत्मा समझकर कर्तव्य करें और बुद्धि का योग परमात्मा शिव के साथ लगाएं। यही शिवरात्रि का संदेश भी है और सार्थक बनाना भी है। और आप विकारों से अपने आप को बचाए रखें और गीता में ये भी कहा गया है कि अन्न दोष से भी परहेज करना है। तीन प्रकार का अन्न बताया गया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक अन्न, क्योंकि अन्न का मन पर असर होता है, का सेवन करना है। ये मांस मदिरा मलेच्छ भोजन नहीं करना है। और इस प्रकार से आप पुरुषार्थ करते हुए नष्टो मुआ होकर सदगति को प्राप्त करोगे।
भाई साहब, आपने कहा कि ये वर्तमान समय, ये परिवर्तन का वक्त चल रहा है, तो पूरी तरह परिवर्तन होने में विश्व को कितना समय शेष है?
ऐसा है बहन जी कि आपने हमसे बात की कि गीता के भगवान निराकार शिव हैं और ये सब मानते हैं कि अभी धर्म ग्लानी का समय आ गया, धर्म ग्लानी के सभी चिन्ह प्रकट हो गए, अवश्य ही भगवान भी अवतरित हुए होंगे। लेकिन ये भी हमने जाना कि बहुत से मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये जो प्रश्न आपने पूछा कि कितना समय शेष है, तो यूं तो सारे आसार दिखाई दे रहे हैं, विनाश के आसार दिखाई दे रहे हैं, प्राणी सृष्टि खत्म होने के सभी आसार प्रकट हो चुके हैं। अगर आप देखें तो परमाणु शस्त्रों की पूरी तैयारी है और क्लाइमेट चेंज के द्वारा भी आप देखते हैं कि सारा ही सब वैज्ञानिक लोग, फ्यूचरोलॉजिस्ट सब लोग कह रहे हैं कि दुनिया बहुत ही खतरनाक स्थान पर आ गई है। और जो लोग देखते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जैसे पेट्रोलियम, प्रेशर, वो भी खत्म होते जा रहे हैं और मॉरल डिग्रेडेशन अपनी एक्सट्रीम पर है, ये सब आसार हैं। और भगवान ये रोका हुआ है परमात्मा ने एक प्रकार से, ताकि वो अपना ज्ञान सुनाकर आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए जितनी आत्माएं जो पांडव बनकर ब्राह्मण बनकर ज्ञान सीख रहे हैं वो अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। किंतु इस प्रश्न को मैं उत्तर दूं कितना समय शेष है, एक तो भगवान ही नहीं बताता, कोई भी ज्योतिषी भी किसी को या डॉक्टर नहीं बताता कि तेरी मृत्यु में कितना समय शेष है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कोई बता भी दे तो इंसान के लापरवाह होने की पूरी संभावना है। कोई कहे कि 2 वर्ष में ये होगा, 3 वर्ष में, तो व्यक्ति सोचता है इतना समय तो पड़ा है। तो हम इस बात को इससे लिंक करते हैं कि मुझे अपनी मृत्यु का टाइम पता है क्या? नहीं पता है। तो सृष्टि का परिवर्तन तो जब होगा होगा, उससे पहले अगर मेरा शरीर छूट गया तो मेरे लिए तो सृष्टि खत्म कहा जाता है, आप मरे जग पर ले। इसलिए इसको कहा जाता है शुभ काम में गीता का भगवान को पहचान कर उनका ज्ञान सुनने में देर नहीं करनी चाहिए, नाउ और नेवर। इसलिए कभी भी ये प्रश्न ना पूछकर कुछ भी समय शेष है हमें उसमें लग जाना चाहिए, और जो कल करना है वो आज करना चाहिए और जो आज करना है वो अब करना चाहिए। इस भगवान को पहचान कर सच गीता ज्ञान को सुनना चाहिए।
थैंक यू भाई साहब, आपने हमें शिवरात्रि पर और गीता ज्ञान पर बहुत सी नई बातें बताई। ओम शांति।
ओम शांति।